الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین. آج ہمیں انشاءاللہ سورہ ہود سے مطالعے کا آغاز کرنا ہے. جیسا کہ بارہا یہ بات عرض کی گئی کہ جو مکی قرآن ہے اس میں ایک تو جو بار سے بعد الموت ہے جس کو معاد کہتے ہیں اس پر بہت زور ہے. پھر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کے حوالے سے انسان کو متوجہ کیا گیا ہے, اور پھر جو اللہ کے بڑے دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کے فیصلے کیے ہیں ان کا تذکرہ ہے. اب یہ جو قرآن مجید کا ایک بہت ہی ریکرنٹ تھیم ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں, رسول دعوت دیتے ہیں, انذار کرتے ہیں, اتمام حجت کرتے ہیں, قوم اگر ایمان لے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو زمین میں تمکن عطا کرتے ہیں, اور اگر قوم من حیث المجموع جو ہے وہ انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور اہل ایمان کو بچا لے جاتے ہیں, اور پھر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو لوگ باقی بچتے ہیں ان کو زمین کی خلافت عطا کرتے ہیں. ابھی جو تھیم بار بار آ رہا ہے اس کی ایک تو معنویت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ رودات دوبارہ دہرائی جا رہی تھی, اور تاریخ میں آخری مرتبہ یہ ہو رہا تھا معاملہ کہ اب پھر ایک رسول آ گئے, اور جس امتحان میں قوم عاد, قوم ثمود, اصحاب مدین, آل فرعون جس آزمائش میں ڈالے گئے تھے اسی آزمائش میں اہل مکہ, قریش, بنی اسماعیل ڈال دیے گئے. اور یہ رودات اس لیے بار بار بیان کی جاتی ہے کہ دیکھو اب ہمارے رسول آ گئے ہیں, اگر تم نے ان کی بات نہ مانی تو تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا. آخرت کا عذاب تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن اس ساری رودات کو قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ کرنا اور مستقل اللہ کی کتاب کا حصہ بنا دینا, اس کا اس کے سوا بھی کوئی اس میں معنویت ہوگی. مولانا اسلائی صاحب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا ہے, کھولا ہے کہ اصل میں یہ جو ساری رودات ہے ایک خاص پہلو سے جو معاد ہے یا بعد سے بعد الموت ہے یا جو قیامت کبرا ہے, جو حشر ہے, اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. قرآن مجید آخرت کے لیے استدلال کرتا ہے, ایک تو اس ریفرنس سے کرتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ, ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے, معنویت ہوتی ہے, تو اس کائنات کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے, انسان کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے. پھر یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہر چیز کا ایک جوڑا ہوتا ہے, اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے, وہ آخرت ہے. بار بار یہ واضح کرتا ہے کہ اس دنیا میں عدل و انصاف نہیں ہو پاتا, تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک اور عالم برپا کیا جائے اور جہاں ٹھیک ٹھیک انصاف ہو جائے. لیکن یہ جو رسولوں کے حوالے سے سارا معاملہ ہوتا ہے یہ بجائے خود بہت بڑی دلیل ہے آخرت کی اور بعد سے بعد الموت کی اور جنت کی اور جہنم کی. یعنی وہ جو ایک قیامت پوری انسانیت کے لیے برپا ہونی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ عدالت جو ہے اپنی جو آسمان میں وہ لگائیں گے محشر میں, وہ دنیا میں بھی لگائی ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ 313 رسول آئے ہیں تو گویا 313 یا 315 مرتبہ اس دنیا کے اندر تاریخ میں وہ عدالت اللہ تعالیٰ نے لگا دی ایک چھوٹے پیمانے پر, کہ جب رسول آئے, رسولوں نے دعوت دی, اصحاب الیمین, اصحاب الشمال متعین ہو گئے, اور پھر ایک تو عذاب آخرت میں بڑا آنا ہے, ایک عذاب دنیا میں آ گیا. کیونکہ بہرحال ظاہری بات ہے آخرت کے سارے معاملے غیب میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ تاریخ میں بتا دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہوا ہے بارہا کہ جب رسول آئے اور رسولوں کی بات لوگوں نے نہیں مانی تو دنیا میں لوگوں کو سزا دے دی گئی اور دنیا میں لوگوں کو نواز دیا گیا. ٹھیک ہے, اور یہی معاملہ آخرت میں بہت بڑے پیمانے پر ہو جائے گا. تو یہ جو سارا قصہ بیان ہوتا ہے بار بار, یہ اصل میں آخرت کے لیے بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ دیکھو وہ عدالت جو اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں بارہا لگائی اس دنیا کے اندر, अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि आखिरत में वो उसको बड़े पैमाने पर और अबदी तौर पर लोगों के लिए फ़ैसला कर दें। यह सूरह हूद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्म फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा ये हुदूफ मुकत्तआत हैं। ये एक किताब है कि जिसकी आयात को पहले पुख्ता किया गया, फिर उसके बाद उसकी तफसील की गई उस हस्ती की तरफ से जो हिकमत वाली और बाखबर है। यानी कुरान मजीद की आयतों का मुहकम होना एक तो इस हवाले से है कि अपने मज़मून के एतबार से, अपने नज़म के एतबार से कुरान मजीद की जो आयात हैं उनकी जो तरतीब है बहुत मज़बूत है, बहुत पुख्ता है। और एक इस लिहाज से भी है कि कुरान मजीद में जो इब्तदाई सूरतें नाजिल हुई, जो मक्की कुरान है ज़्यादातर, उसमें एक तो ये है कि आयतें छोटी छोटी हैं और उनमें मुख्तलिफ़ वाक़यात को, मुख्तलिफ़ किस्सों को इजमालन बयान किया गया है और फिर उसी चीज़ों को मदनी कुरान में खोल कर तफसील से बयान किया गया। यानी पहले इजमाल में किस्से आए हैं, उसके बाद फिर उन्हीं चीज़ों को बहुत तफसील से बयान कर दिया गया। और इस कुरान का बुनियादी पैगाम क्या है? अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, तुम बंदगी न करो मगर अल्लाह की। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से एक खुला खुला ख़बरदार करने वाला और बशारत देने वाला हूँ। यानी ख़बरदार करूँगा, लोगों को मुतवज्जे करूँगा, जो लोग ईमान ले आएंगे उनको बशारत दूँगा, जो नहीं मानेंगे उनको डर सुनाऊँगा। वअनिस्तग़फिरु रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैही, और ये कि तुम अपने रब की जनाब में इस्तग़फार करो फिर उसकी तरफ रुजू करो। युमत्तेकुम मतान हसनन इला अजलिम मुसम्मा, तो वो तुम्हें दुनिया का एक कुछ अच्छा फ़ायदा कुछ अरसे के लिए दे देगा, एक ख़ास मुद्दत तक के लिए। वयूतिकुल्लज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला, और वो हर फजल वाले को उसका फ़ज़ल अता करेगा। वइन तवल्लव, और अगर तुम रुगर्दानी करोगे, फ़इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, तो बेशक मुझे अंदेशा है तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन के अज़ाब से। यानी एक तो बड़े दिन का अज़ाब वो है जो आख़रत में आना है, और एक वो बड़े दिन का अज़ाब है जो दुनिया में रसूलों के इनकार पर अज़ाब आता है। तो यहाँ दो चीज़ें बयान की गई, इस्तग़फ़ार और तौबा। ये दोनों अल्फाज साथ साथ बयान होते हैं, लेकिन एक ख़ास मानों में हम ये कह सकते हैं कि तौबा एक बड़ी चीज़ है, इस्तग़फ़ार उसका एक हिस्सा है। क्योंकि तौबा का आगाज़ होता है नदामत से, जो एक बातनी चीज़ है, उसके बाद ज़बान से उसका इजहार होता है। इंसान माफ़ी मांगता है, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, फिर उस गुनाह को छोड़ देता है और आइंदा के लिए अज़्म करता है। तो एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि तौबा और इस्तग़फ़ार में कुल और जुज़ का जो है वो फ़र्क है। यानी तौबा एक बड़ा पैकेज है और इस्तग़फ़ार उसका एक हिस्सा है। और दूसरा इस लिहाज से भी है कि तौबा आम तौर पर इंसान किसी मुतायन गुनाह, किसी मुतायन लर्जिश पर करता है। कोई उसने गुनाह किया और फिर एकदम ख्याल हुआ, चेता हुआ, इंसान ने तौबा की। इस्तग़फ़ार एक मुस्तकिल करने का अमल है, ठीक है ना। इंसान का बंदा होना बुनियादी तौर पर कमज़ोर होना है, आजिज़ होना है, नाकिस होना। तो इसीलिए हम देखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करते थे। तो एक नक्स जो होता है वो अख़लाक़ी होता है और एक नक्स वजूदी होता है। तो इस्तग़फ़ार हमें हर वक्त करना है, चाहे हमें अपनी कोई कोताही उस वक्त याद हो चाहे ना हो। इल्लाही मर्जिउकुम, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, और बेशक वो हर चीज़ पर क़ादिर है। अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तग़फू मिन, आगाह हो जाओ कि ये लोग दोहरे करते हैं अपनी सीनों को या अपने सीनों को फेरते हैं। लियस्तग़फू मिन, ताकि छुपाएँ उससे। अला हीन यस्तग़शून सियाबहुम, आगाह हो जाओ जब वो ओढ़ते हैं अपने कपड़े अपने ऊपर। यालमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून, तो वो उनसे वाकिफ़ होता है, वो तो जानता है हर उस चीज़ को जो वो छुपाते हैं और हर उस चीज़ को जो वो ज़ाहिर करते हैं। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और बेशक वो तो सीनों के भेदों को भी जानता है। इस आयत के हवाले से एक राय तो ये है कि जैसे ये मुशरिकीन मक्का के रवैये का इजहार है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखते थे तो कन्नी कतराते थे, अपना मुँह मोड़ लेते थे। और जिस तरह सूरह नूह में बयान होगा ना कि जब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम उनको दावत देते थे तो वो क्या करते थे, अपने सर पे कपड़ा डाल लेते थे, कानों में उंगलियां डाल लेते थे, इस्तकबार करते थे। एक तो ये मुराद हो सकता है, और दूसरी मुराद जो कुछ रिवायतों में आई है कि कुछ सहाबा में जो है बहुत ज़्यादा हया का गलबा था, तो जब वो खलवत में होते थे, बैतुलखला में होते थे या बीवियों से सोहबत के वक्त, उस वक्त भी जो बरहनगी का एहसास होता था वो उनको बहुत ज़्यादा होता था। तो गोया उस वक्त भी अपने जो है वो सीने को दोहरा करके और जो है नीचे की तरफ होते हुए गोया अपनी शर्मगाह को छुपाने की कोशिश करते थे। तो कहा कि देखो इस कदर इतनी हया की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला के साथ इस तरह का मामला ना करो, अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ध इल्ला अलल्लाह रिस्कुहा, और ज़मीन पर कोई चौपाया नहीं है मगर ये कि उसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। व यालमु मुस्तकर्रहा व मुस्तौदाहा, और अल्लाह जानता है जहाँ उसको ठहरना है और जहाँ उसको सौंपा जाना है। ज़मीन में जहाँ वो रहेगा, ज़िंदा रहेगा, चले फिरेगा, अल्लाह वो भी जानता है। और ज़मीन के किस हिस्से में उसको सौंपा जाएगा, उसके जिस्म को दफन किया जाएगा, अल्लाह उसको भी जानता है। कुल्लुन फ़ी किताब मुबीन, और ये सब कुछ अल्लाह के यहाँ एक खुली और वाज़ह किताब में मुंदरज है, अल्लाह के इल्म में मौजूद है। वहुअ लदी खलक समावत वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहू अलल मा, और वही है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को छः अय्याम में, छः मराहिल में, और उसका अर्श पानी पर था। अब ज़ाहरी बात है ये मुतशाबिहात में से है, सही रिवायत में भी आता है कि कान अल्लाह वलम यकुन शैउन माहू, अल्लाह ताला था और अल्लाह के सिवा कोई नहीं था, बस सिर्फ अल्लाह यकता था। वकान अर्शुहू अलल मा, और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। और ये क्यों किया उसने, आसमानों और ज़मीन को क्यों पैदा किया? लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें जांचे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, कौन भले अमल करता है। सूरह मुल्क के शुरू में भी ये आयत इस तरह आएगी। और फुज़ैल इब्ने अय्याज ने कहा कि देखो अहसन अमल का मतलब ये है कि आदमी का अमल साइब भी हो और खालिस भी हो, सवाब भी हो और खालिस भी हो। तो पूछा किसी ने कि इसका क्या मतलब है, कहा कि भाई खालिस हो मतलब ये है कि अल्लाह के लिए हो, और सवाब हो इसका मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ पर हो। तो अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी अमल का नेकी के तौर पे कबूल किया जाना, उसकी ये दो शर्तें हैं, एक ये है कि वो अल्लाह के लिए किया जाए, और दूसरा ये है कि वो उस तरीके पर किया जाए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। वलैन कुलता इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौत लयकूलन्ना लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुन मुबीन, और ए नबी जब आप ये कहते हैं कि बेशक तुम सबको उठाया जाएगा तुम्हारी मौत के बाद, तो ये काफिर कहते हैं कि इन हाज़ा इल्ला सिहरुन मुबीन, ये नहीं है मगर एक जादू खुला हुआ। वलैन अखरना अनहुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मादूदा, और अगर हम मुअख्खर कर रखें अज़ाब इन में से कुछ लोगों पर एक ख़ास मुद्दत तक, लयकूलुन्ना मा यहबिसु, तो ये कहने लगते हैं कि उस अज़ाब को किसने रोका हुआ है, बहुत देर हो गई, 5 साल 6 साल हो गए आप हमें कह रहे हैं कि मेरे इनकार पर अज़ाब आएगा, अभी तक तो आया नहीं। अला यौम यातीहिम लैसा मसरूफन अनहुम, आगाह हो जाओ जिस दिन वो अज़ाब इन पर आएगा तो कोई उसको फेरने वाला नहीं होगा उनसे। वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और जिस चीज़ का ये ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो चीज़ उनको घेर लेगी। वलैन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़ानाहा मिन, और जब हम इंसान को अपनी तरफ से रहमत का मज़ा चखाते हैं और फिर जब आजमाइश के तौर पर उससे वो छीन लेते हैं, इन्नहू लयऊसुन कफूर, तो वो बिल्कुल नाउमीद होके रह जाता है। यानी अल्लाह ताला नेमत देते हैं वो भी आजमाइश है, नेमत वापस ले लेते हैं वो भी आजमाइश है, लेकिन आम तौर पर इंसानों का पर्सपेक्टिव ये हो जाता है कि इस दुनिया में इंसान जिस इंसान को अल्लाह ताला नवाजता है, माल व दौलत देता है, इक्तदार देता है, गोया अल्लाह उससे राज़ी है, और अगर इंसान अल्लाह ताला जो है किसी को महरूम रखता है और माल नहीं देता, औलाद नहीं देता, दुनिया में सियादत व क़ियादत नहीं देता, तो गोया अल्लाह उससे नाराज़ है। हालांकि इसका कोई ताल्लुक अल्लाह की खुशनूदी और नाराज़गी से नहीं है, ये दोनों चीज़ें आजमाइश हैं। वलैन अज़क़नाहु नामा बाद दर्रा मसहतु लयकूलन्ना ज़हबत सय्यातु अन्नी, और अगर हम उसको चखाएं उस तकलीफ़ के बाद जो उसको पहुंची है, नेमतें आराम पहुंचाएं, तो वो ज़रूर कहेगा कि भाई मुझसे तो दूर हो गई तमाम तकलीफ़ें। इन्नहू लफ़रिहुन फ़खूर, उस वक्त वो इतराने लगता है, फ़ख्र करने लगता है। यानी जब तकलीफ़ आती है तो मायूस होकर बैठ जाता है, और जब अल्लाह ताला नेमत देते हैं तो इतराने लगता है। इल्लल्लज़ीना सबरू वआमिलुस्सालिहात, इस रवैये से बचे रहने वाले कौन लोग हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाएँ, सब्र करें, साबित कदम रहें और नेक आमाल करें। इस तरह आगे कुरान मजीद कहेगा ना सूरह मारिज में कि इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, इंसान थुड़दिला है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब तकलीफ़ आती है जज़ा फ़ज़ा करने लगता है। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब वो खैर मिलती है तो उसको रोक रोक के रखने लगता है। इल्लल मुसल्लीन, कौन है जो सही जगह पे खड़े रहते हैं, सही रवैया अख्तियार करते हैं, जो झुकने वाले हैं अल्लाह के सामने नमाज में झुकने वाले। तो यहाँ कहा कि वो लोग के जो साबित कदम हैं और नेक आमाल करते हैं वो इस रवैये से बचते हैं। उलाई का लहुम मगफिरतुन अजरुन कबीर, इन लोगों के लिए मगफरत भी है और बहुत बड़ा अजर भी है। फ़लाअल्लक तारिकुम बादमा यूहा इलैका वदाइकुम बिही सदरुक, तो ऐ नबी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरफ जो वही किया गया है आप उसके कुछ हिस्से को छोड़ बैठें और आपका सीना इससे तंग हो। अई यकूलू लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़ुन अव जाअ माअहु मलक, कि ये लोग बार बार आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि क्यों नहीं इन पर कोई ख़जाना उतारा जाता या इनके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आता। यानी ये जो बार बार की इनकी डिमांड्स हैं, मुतालबे हैं हिस्से मौजज़ा दिखाने के, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी आप कुछ कंप्रोमाइज़ करने लगें या आपका सीना भींचने लगे। यानी वो कहते थे कि अगर ये अल्लाह के रसूल हैं तो इतने तंगदस्त क्यों हैं, इनके लिए ख़जाने क्यों नहीं हैं, इनके आगे जो है वो एस्कॉर्ट करने के लिए फ़रिश्तों के लश्कर क्यों नहीं चल रहे। इन नमा अंत नज़ीर, ए नबी आप तो बस ख़बरदार करने वाले हैं। वल्लाहु आला कुल्ली शैइन वकील, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का ज़िम्मेदार और वकील है। अम यकूलून अफ्तरा, तो क्या ये कहते हैं कि इसको आपने खुद से घड़ लिया है, आप बना लाए हैं इस कुरान को। कुल फ़तू बिआश्री सुअरिम मिसलिही मुफ्तरायात, तो ए नबी इनसे कहिए कि ठीक है अगर ये घड़ी हुई चीज़ है, फैब्रिकेटेड है, तो तुम इस जैसी 10 सूरतें बना लाओ। वदउ मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा जिसको चाहो बुला लो, जिन्नात को पुकार लो, अपने माबूदों को पुकार लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। सूरह बनी इसराइल में कहा गया कि फलिया इस किताब जैसी कोई किताब ले आओ, यहाँ कहा गया कि 10 सूरतें ले आओ। सूरह बकरा में, सूरह तूर में कहा जाएगा भाई इस जैसी एक जो है वो आयत बना के ले आओ। फ़ैलम यस्तजीबू लकुम, बस अगर ये आपकी बात, यह आपका मुतालबा पूरा न कर सकें। फ़ालमु अन्नमा उन्ज़िल बिइल्मिल्लाह, तो तुम लोग जान लो कि बेशक इस कुरान को उतारा गया है अल्लाह के इल्म से, अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद पर इस कुरान को उतारा है। वह अल्लाह इलाह इल्लाहु, और ये कि नहीं है इलाह कोई सिवाय अल्लाह के। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, तो क्या तुम फर्मा बरदारी इख्तियार करते हो। मन कान युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम फ़ीहा वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, जो कोई भी दुनिया की ज़िंदगी चाहेगा उसका मुरीद बनेगा और उसकी ज़ीनत का तालिब होगा, तो हम उसको उनके आमाल का पूरा पूरा बदला दे देंगे इस दुनिया ही में, और उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, उनके साथ कोई कमी नहीं की जाएगी। सूरह बनी इसराइल में इसको और खोल के बताया जाएगा कि मन कान युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीद सुम जालना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। इससे ये बात भी एक हल हो जाती है ना, जो हमारे जदीद लोगों में एक इश्काल पैदा होता है कि ये क्या बात है कि बहुत से लोग हैं गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, बहुत चैरिटी के काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, लेडी वेलिंगटन है और सर गंगाराम है और अभी लेडी डियाना थी या और इस तरह की बहुत सी जो है वो चैरिटी के इस तरह के काम करते हैं, तो क्या इनको कोई अजर नहीं मिलेगा। अगर तो वो अल्लाह से अजर के तालिब हैं तो अल्लाह उनको अजर देंगे, लेकिन अगर वो चाहते थे कि उनको दिली तस्कीन मिले तो अल्लाह ने उनको महरूम नहीं रखा, अगर वो चाहते थे कि उनका नाम ज़िंदा रहे तो अल्लाह ने इससे भी उनको महरूम नहीं रखा। ठीक है, तो जो चीज़ वो नहीं चाहते थे तो हम काहे को परेशान हो रहे हैं कि अल्लाह उनको वो क्यों नहीं देगा, जब उन्होंने अल्लाह से कुछ चाहा ही नहीं है, आखिरत उनका मतलूब ही नहीं है तो अल्लाह उनको नहीं देगा। हाँ, दुनिया में उन्होंने चाहा तो अल्लाह उसको महरूम नहीं करते, दुनिया में उनको नवाजते हैं। उलाइकल लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्लन नार, ऐसे लोगों के लिए आख़िरत में नहीं है सिवाय जहन्नुम के। वहबित मा सनऊ, और जो कुछ उन्होंने किया वो सब अकारत हो गया। फ़ीहा, इस दुनिया में। वह बातिलुम मा कानू यामलून, और जो कुछ वो अमल करते थे वो बातिल हो गया। एक बहुत साहिब थे जो मुशरिकी जो जाहिलियत के ज़माने में अल्लाह के नबी से पहले दुनिया से चले गए और बहुत जो है वो दान किया करते थे, बहुत खैरात करते थे। तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी उन साहिब का क्या बनेगा, तो कहा कि नहीं वो तो अल्लाह के नबी ने कहा क्या उसने कभी अल्लाह से ये कहा था कि अल्लाह तुम मुझे क़यामत के दिन माफ़ कर देना या मेरी मग़फ़िरत कर देना। कहा कि नहीं, ये तो कभी नहीं कहा। तो कहा फिर अल्लाह उनके साथ वही मामला करेंगे, जो उनका मुतालबा है वो अल्लाह उनको दुनिया में दे देंगे। अफ़मन कान आला बजीनति मिन रब्बिही, तो भला वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक वाज़े दलील पर है। वयतलूहु शाहिदुम मिन्हुम, और उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ एक गवाह अल्लाह की तरफ से भी उसको मिल गया है। वमिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामुम व रहमा, और इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब वो राह बताती थी और रहमत थी। उलाइका युमिनून बिही, यही लोग हैं जो इस कुरान पर भी ईमान लाएंगे। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि देखें एक साहिब वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने नूर फितरत पर पैदा किया, उन्होंने अपने नूर की हिफाजत की, और उसके बाद अल्लाह की तरफ से आसमान से वही आ गई जिसने उसको सपोर्ट किया। सूरह नूर में इसको और वाज़े किया जाएगा, नूरुन आला नूर। एक नूर है जो इंसान पोटेंशियली लेकर पैदा होता है, और एक नूर वो है जो खारिज में वही के तौर पर उसको दिया जाता है। सही रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल अमानता नज़लत फ़ी जज़्री कुलूबिर रिजाल। अमानत जो है वो आदमियों के दिलों की गहराइयों में उतार दी गई, वो अमानत लेकर पैदा हुआ। सुम्मा नज़लल कुरान, फिर अल्लाह ताला ने कुरान उतार दिया। फ़ालिमु मिनल कुरान व आलिमु मिनस सुन्ना, तो उन्होंने पहचान लिया उसको कुरान के ज़रिए भी और सुन्नत के ज़रिए भी। यानी एक नूर उनको देकर भेजा गया, वो बयीना है, और एक अल्लाह की तरफ से वही आ गई। वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाबी फ़न्नारु मौइदुह, और जो कोई भी इन ग्रोहों में से इस कुरान का इनकार करेगा तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। फ़ला तकुफ़ी मिरियतिम मिन, तो आप इसके बारे में किसी शक में ना पढ़ें। इन्नहुल हक्कु मिर रब्बिका वलाकिन्न अक्सर नासि ला युमिनून, यही हक है आपके रब की तरफ से लेकिन लोगों की अक्सरियत ईमान नहीं लाती, यकीन नहीं करती। वमन अज़लु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। यानी बार बार कुरान मजीद जो है वो शिर्क को कहता है कि ये अल्लाह पर बोहतान है। उलाइका युरदून अला रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिनको पेश किया जाएगा उनके रब के सामने रूबरू। व यकूलुल अशहादु, और उस वक्त गवाही देने वाले कहेंगे हा उलाइल्लज़ीन कज़बू अला रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब को झुटलाया था या अपने रब के पैगाम को की तकज़ीब की थी या झूठ बोला था अपने रब पर। यानी अल्लाह अपने रब पे झूठ बोलने का मतलब क्या है कि ये कहा कि अल्लाह की बेटी है, अल्लाह का बेटा है, अल्लाह की बीवी है, अल्लाह ने फ़लाँ फ़लाँ हस्तियों को इस कायनात में अपने साथ शरीक ठहराया। तो ये गवाही दी जाएगी, फ़रिश्ते भी गवाही देंगे, इंसान के आज़ा भी गवाही देंगे, अम्बिया भी गवाही देंगे। अला लानतुल्लाहि अल ज़ालिमीन, आगाह हो जाओ अल्लाह की लानत है ज़ालिमों पर, मुशरिकों पर। ये कौन लोग हैं? अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा, जो खुद भी रुकते हैं अल्लाह की राह से, दूसरों को भी रोकते हैं और इसमें कजी ढूंढते हैं, अजीब टेढ़ निकालते हैं। वहुम बिल आखरतिहुम काफिरून, और यही लोग हैं जो आखरत के मुनकिर हैं। उलाइका लम यकूनू मौजिज़ीन फिल अर्द, ये वो लोग हैं कि जो ज़मीन में थकाने वाले नहीं हैं, ना अल्लाह को ना उसके रसूलों को। वमा काना लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और इनके लिए अल्लाह के सिवा कोई हिमायती कोई कारसाज नहीं है। युदाफ़ु लहुमुल अज़ाब, उनके लिए दूना कर दिया जाएगा उनका अज़ाब। मा कानू यस्ततीउन समा व मा कानू युबसिरून, ना वो सुनने की इस्तेआत रखते थे और ना ही देखते थे। अल्लाह ने उनको समात इसलिए दी थी कि भाई हक के पैगाम को सुने, अल्लाह ने बसारत इसलिए दी थी कि इस कायनात में अल्लाह की निशानियों को देखें, और जब अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी रसूल की शक्ल में ज़ाहिर हो जाए तो उस पर ईमान लाएँ, लेकिन इन्होंने इस्तेफादा नहीं किया। उलाइकल लज़ीना खसरू अनफुसहुम वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला और जो कुछ ये झूठ बांधते थे अल्लाह पर वो सब उनसे खोया गया। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरतिहुमुल खासिरून, इसमें कोई शक नहीं है कि यही लोग हैं जो आखिरत में सबसे बढ़कर नुकसान पाने वालों में से होंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, इसके बरक्स वो लोग के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए। व अखबतू इला रब्बिहिम, और जिन्होंने जारी की, आजजी इख्तियार की, झुक गए अपने रब की तरफ। उलाइका असहाबुल जन्ना, यही लोग हैं जो जन्नती हैं। हुम फीहा खालिदून, इसमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करें। मसलुल फरीकैन निकल आमा वल असम वल बसीरी वस्समी, ये दो गुरु हैं, इनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे अंधा बहरा और देखने वाला और सुनने वाला। यानी एक गुरु वो है कि जिसने जो अल्लाह ने उसको सलाहियत दी थी दीद की, उसको इस्तेमाल किया, हक को देखा, अल्लाह की निशानियों को देखा और हक का एतराफ़ किया, और कुछ लोग इसके बरक्स अंधे बने रहे। इसी तरह एक कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी समाअत को ज़िंदा रखा, हक की पुकार जब उनके कानों पर आई तो उसको कबूल किया, और कुछ लोग थे कि जो हक के लिए अंधे जो है वो बहरे बने रहे। इकबाल ने भी कहा है ना कि दीदन दिगर आमोस शुनीदन दिगर आमोस, ये जो देखना है चीज़ों को देखना, ऑब्जेक्ट्स को, और एक इफादियत की निगाह से चीज़ों को देखना, ये तो जानवरों का सा देखना है। दीदन दिगर आमोस, देखना सीखो एक और देखना, और सुनना सीखो एक और सुनना। इस कायनात में चीज़ों को अल्लाह की मखलूक के तौर पे और फिर अल्लाह की निशानी के तौर पे देखना सीखो। मसौल फरीकई निकल आमा वल असमी वल बसीरी वसमी, हल यस्तवियानी मसला, क्या ये दोनों गुरु बराबर हो सकते हैं? अफला तज़क्करून, तो क्या तुम गौर नहीं करते? दुनिया में भी बराबर नहीं है तो आखरत में कैसे बराबर हो जाएंगे? अब यहाँ से दोबारा फिर कुछ रसूलों का तस्करा है, वलकत अरसलना नूहन इला कौमी ही, और हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ, इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, और उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारी तरफ एक खुला खुला खबरदार करने वाला हूँ, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। हर नबी की दावत का बुनियादी पैगाम यही है, देखो अल्लाह की बंदगी न करो सिवाय अल्लाह की। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, मुझे अंदेशा है तुम्हारे बारे में एक दर्दनाक दिन के अज़ाब का। फ़क़ाल अल-मलअुल्लज़ीन कफ़रू मिन कौमिही, तो जो सरदार थे उनकी कौम के, जो काफिर हुए उनकी काफिर कौम के जो सरदार थे, उन्होंने कहा मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, पहली बात तो ये है कि हम नहीं देखते तुम्हें मगर अपना जैसा एक इंसान। डॉक्टर साहब इसको कहा करते थे ना कि मदद असल में एक ही है, रसूलों के जो मुखातबीन थे उन्होंने क्या किया कि रसूलों की बशरियत की बुनियाद पर उनकी रिसालत का इनकार कर दिया कि ये हमारे जैसे इंसान है, खाना खाते हैं, बाज़ारों में चलते फिरते हैं, ये रसूल कैसे हो सकते हैं। और बाद के जो लोग होते हैं उन्होंने दूसरा मरज़ इख्तियार कर लिया कि रसूलों की रसालत की बुनियाद पर उनकी बशरियत का इनकार करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि वो डिविनाइज्ड हैं और उलूहियत में शरीक हैं। तो कहा कि भाई ये तो हमारे जैसे इंसान हैं, वमा नराक तबाक इल्लल्लज़ीन हुम अराज़िलुना बादी अर्राई, और हम नहीं देखते कि तुम्हारी जो पैरवी करने वाले हैं मगर ये वो लोग हैं कि जो हम में नीच हैं और जिनकी तो कोई राय ही नहीं है, जो बिला तामुल बस जैसे सामने से चीज़ों को देखकर एकदम जो है वो मान लेते हैं। तो ये ऐसा मामला है कि हर कौम ने ऐसा ही कहा, यानी उनके जो चौधरी थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी पैरवी करने वाले नीच लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं। हिरकल के दरबार में अबू सुफियान का जो मुकालमा हुआ उसमें हिरकल ने एक सवाल ये भी किया था, चूँकि वो आलिम था, बाइबल का जानता था, पुरानी तमाम रिवायतों को, तो उनने पूछा कि भाई ये जो पैगंबर आए हैं इनकी पैरवी कौन करते हैं, अशराफ़ुन्नास तबाउहू अम ज़ुआफ़ाउहुम, क्या लोगों के अशराफ इनकी पैरवी कर रहे हैं या कमज़ोर लोग? तो अबू सुफियान ने कहा कि बल ज़ुआफ़ाउहुम, कमज़ोर लोग ईमान कर लाए हैं। तो हिरकल ने कहा कज़ालिक अतबाउ रसूल, अम्बिया के पैरोकार ऐसे ही होते हैं, यानी वो भी जानता था कि यही एक मामला होता है कि आमतौर पर कमज़ोर तबका सबसे पहले रसूलों पर ईमान लाते हैं। वमा नरा कर तबाह का इल्लल्लज़ीन हुम अराज़िलुना बादी अर्राय, वमा नरा लकुम अलैना मिन फ़ज़ल, और हम तो तुम्हें अपने ऊपर कोई फजीलत नहीं देखते कि तुम्हें कोई बड़ाई हासिल है हम पर, बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा ही समझते हैं। क़ाल या कौमी अरअयतुम इन कुंतु अला बय्यिनतिम मिन रब्बी, तो सैयदना नूह ने कहा ऐ मेरी कौम क्या तुम गौर नहीं करते कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह निशानी पर हूँ, वह आतानी रहमतम मिन इंदिही, और फिर उसने अपने पास से मुझ पर रहमत भी भेजी। यानी रसूल जो होता है हर कौम में वो फ़र्द होता है कि जिसने कभी शिर्क नहीं किया होता, वो तौहीद पर होता है, वो जो अहद अलस करके आया होता है उसी पर कायम होता है। तो कहा कि मैं तो पहले भी अपने रब की तरफ से वाज़ेह बयीना पर था और अल्लाह ने अपनी रहमत से भी मुझे नवाजा, वही से नवाजा, मुझे रसूल बनाया। फ़ुम्मियत अलैकुम, तो अगर तुम्हें उससे ओंधा कर दिया गया है, तुम उसको देखने से महरूम हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अनुल्ज़िमु कुमूहा व अंतुम लहा कारिहून, अगर तुम्हें ये बात नागवार हो तो क्या मैं तुम पे थोप दूँ इसको, क्या मैं तुम पर जबरन इस पर मजबूर करूँ? ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वह या कौमिला असअलुकुम अलैहि माला, और ऐ मेरी कौम मैं तुमसे किसी माल का तालिब नहीं हूँ। इन अजरी इल्ला अलल्लाह, मेरा अजर मेरी मजदूरी तो मेरे अल्लाह के ज़िम्मे है। वमा अना बितारिदिल्लज़ीना आमनू, और मैं तुम्हारे कहने पर इन अहले ईमान को अपने से दूर करने वाला नहीं हूँ, धुतकारने वाला नहीं हूँ। यानी वही डिमांड जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जा रही थी वही सैयदना नूह से की गई थी कि ठीक है नूह हम तुम्हारी बात सुन लेंगे, मान लेंगे, लेकिन पहले इन जो है माज़ अल्लाह अराज़िल को तो अपने से दूर करो, फिर हम चौधरी लोग तुम्हारे पास आएँगे। इन नहुम मुलाकू रब्बिहिम, बेशक इनको भी अपने रब से मुलाकात करनी है। वला किन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं तुम्हें देखता हूँ तुम लोगों को कि तुम बेसमझ लोग हो, तुम जाहिल लोग हो। वया कौमी मैं यंसुरुनी मिन अल्लाह इन तरत्तुहुम, और ऐ मेरी कौम अगर मैंने इन लोगों को अपने से दूर कर दिया तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन करेगा? ये वही बात है, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अब मुझे डर है कि मैं इनको अपने से दूर कर दूँगा तो अल्लाह कहीं मुझे ना पकड़ ले, और मुझे कौन अल्लाह से बचाएगा? अफला तज़क्करून, क्या तुम ध्यान नहीं करते? वला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल ग़ैब वला अकूलु इन्नी मलक, और मैं तुमसे ये थोड़े ही कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, یا میرے پاس غیب کا علم ہے یا میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، تم مجھ سے جو مطالبے کر رہے ہو سارے اس طرح کے ہیں، یہ میرا کلیم ہی نہیں ہے. میرا کلیم تو یہ ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور میں تمہیں توحید کی اور آخرت کی دعوت دے رہا ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میں یہ کہوں گا تمہارے کہنے پر کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں بہت حقیر دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا. تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ لوگ دنیا میں بھی لا خیرے ہیں، ان کو کوئی کمال نہیں ملا، آخرت میں بھی لا خیرے ہوں گے. کہا تمہارے کہنے پر میں یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے جیوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے یہ کیا یا کہا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثر تجدالنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو قوم نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے بہت آرگومنٹ کر لیا، بہت جھگڑا کر لیا اور بہت لمبی ہو گئی ہماری آپس کا جو مجادلہ ہے، اب جو تم ہمیں ڈر سناتے ہو لے آؤ اگر تم سچے ہو. کان پک گئے ہمارے سن سن کر، بس اب تم وہ لے آؤ جو تم نے لانا ہے. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بموجزین، سیدنا نوح نے کہا کہ بے شک وہ عذاب تو تم پر اللہ ہی لائے گا جب اللہ چاہے گا، لیکن جب وہ آئے گا تو تم جو ہے اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، تم اس سے بھاگ نہیں سکو گے. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، اور دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری غلط کاریوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں گمراہ کرنا ہے، تو پھر میری جو ہے وہ خیر خواہی یا میری نصیحت، میں جتنا بھی تمہیں نصیحت کروں تمہیں فائدہ نہیں دے گی. اگر طے ہو چکا ہے، مہر ہو چکی ہے، تو اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے. وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. ام یقولون افترا، اب یہ لگتا ہے کہ جیسے جملہ معترضہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے، تو کیا یہ قریش یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو خود سے بنا لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، اے نبی فرما دیجئے اگر میں نے اس کو گھڑ کے میں لے آیا ہوں تو ٹھیک ہے، اس کا وبال، اس کا جرم مجھ ہی پر آئے گا، اور جو تم جرائم کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، میں اس سے بری ہوں، میں اس کا ذمہ نہیں لیتا. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ آپ کی قوم میں سے اب ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر وہ جو ایمان لا چکے. بتا دیا گیا بس ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اسی موقع پہ پھر پیغمبر نے ان کے خلاف بد دعا کی، جب طے ہو گیا کہ اب مزید ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر کہا کہ زمین پر ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا. فلا تب تئس بما کانوا یفعلون، تو پھر اب یہ جو کام کر رہے ہیں اس پر آپ غمگین نہ ہوں. وسنع الفلک بعیوننا ووحینا، اور آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری حکم کی روشنی میں. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کیجیے گا. ظاہر بات ہے پیغمبر کے اندر رحمت ہوتی ہے کہ بھائی ان کی کوئی شفاعت اب مجھ سے نہ کیجیے گا، اب یہ جو ہے ان کا معاملہ طے ہو چکا ہے. انہم مغرقون، بے شک یہ غرق ہو کر رہیں گے. ویسنع الفلک، اور وہ کشتی بناتے تھے. وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا من، اور جب جب ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار گزرتے تو ان کا ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے. یعنی یہاں تو کوئی پانی ہی نہیں ہے، نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی سمندر ہے، اور یہ بڑے میاں جو ہے کشتی بنا رہے ہیں. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو سیدنا نوح نے کہا کہ دیکھو اگر آج تم میرا ٹھٹھا کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، تو اسی طرح وہ وقت آئے گا کہ ہم تمہارا اس طرح مذاق کریں گے جیسے تم ہمارا مذاق کرتے ہو. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، ان قریب تم جان لو گے کہ جس کس کے پاس آئے گا وہ عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کس پر نازل ہوگا ایسا عذاب جو ٹھہر جائے گا. حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا. فارت تنور، اور تنور نے جوش مارا، یعنی زمین کے چشمے ابلنے لگے. کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا کہ بھائی اس کشتی میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا رکھ لو. واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن، اور اپنے گھر والوں کو لے لو سوائے جن کے بارے میں پہلے سے طے ہو چکا ہے، اور طے ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ان کا جو ایک بیٹا ہے وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اس کا آگے بھی تذکرہ آئے گا. ومن آمن، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی لے لو، یعنی کشتی بناؤ، اس میں ہر جاندار کا ایک جوڑا لے لو، اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن کے بارے میں طے ہو گیا ہے کہ وہ کفر پہ مریں گے، اور اہل ایمان کو ساتھ بٹھا لو. اب کتنے لوگ تھے؟ مختلف تعداد ہیں. اور ظاہر بات اہلکہ میں، ظاہر بات ہے جن کے بارے میں کہا کہ طے ہو گیا، ان میں ان کی بیوی بھی تھیں جو ایمان نہیں لائی. وما آمن معه الا قلیل، اور ان پر ایمان نہیں لائے تھے مگر تھوڑے لوگ، 50-60-70-80 لوگ تھے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، और बोले कि अब इसमें दाखिल हो जाओ कश्ती में, अल्लाह के नाम से ही इसका चलना है और अल्लाह के नाम से ही इसका लंगर डालना है, ठहरना है। इन रब्बी लगफूर रहीम, और बेशक मेरा रब बख्शने वाला रहम करने वाला है। वही तजरीब हिम फी मऊजिन कल जिबाल, और वो कश्ती उनको लिए जा रही थी लहरों में, और वो लहरें ऐसी थी जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ की तरह ऊंची लहरें थीं। वनादा नूह इब्नहु, यानी फिर वो और जगह बयान हुआ है कि ज़मीन से भी पानी आया, आसमान से भी पानी बरसना शुरू हो गया। उस मौके पे सैयदना नूह ने अपने बेटे को पुकारा, वकान फ़ी माज़िलिन। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे वो हैं जो साहिब ईमान थे, जिनसे आगे नस्ल चली है, साम, हाम और याफिस। और ये बेटा जिसका नाम याम था और जिसका लकब कनान था, वो मुशरिक था, उसको उन्होंने पुकारा। वकान फ़ी माज़िलिन, और वो हो रहा था किनारे पे, या बुनैयर कम माना, ए लड़के, ए बच्चे, हमारे साथ शामिल हो जाओ, कश्ती में आ जाओ। वला तकुम माल काफिरीन, और देखो काफिरों के साथ मत होना। इसी वजह से देखिए एक जैसे हमारे यहाँ मेटाफर बन गया कि सफ़ीना नू, सफ़ीना नजात। इमाम मालिक अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि असुन्नतु सफ़ीनतु नूहिन, ये जो सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये नूह का सफ़ीना है। जो इसमें सवार हो जाएगा, मन रकीबा फ़ीहा नजा, जो इसमें सवार हो जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो इससे अलहदा रहेगा वो हलाक हो जाएगा। तो यही सुन्नत जो है ये सफ़ीना नूह है। इसीलिए अगर आप देखें अहले तशय्यो के यहाँ, उनके यहाँ ये मेटाफर इस्तेमाल होता है अपने अइम्मा के लिए और अहले बैत के लिए कि भाई ये सफ़ीना नूह है, जो अइम्मा को मान लेगा वो कामयाब हो जाएगा। वला तकुम माल काफिरीन, और देखो काफिरों के साथ मत होना। क़ाल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, तो उन्होंने कहा, उनके बेटे ने कहा कि अनकरीब मैं पनाह ले लूँगा किसी पहाड़ पर जो मुझे बचा लेगी पानी से। قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم, तो सैयदना नूह ने कहा कि देखो आज अल्लाह के जो हुक्म आया है इससे कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पे अल्लाह ही रहम कर दे। وحال بينهم الموج فكان من المغرقين, और फिर एक बड़ी मौज इन दोनों के दरमियान हायल हो गई और उनका बेटा डूब गया। وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء, अब इससे भी ये बात वाजे करना मकसूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बता रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भी बता रहे हैं कि देखो जब अल्लाह का फ़ैसला आता है तो इतना बेलाग होता है, उसमें यह नहीं देखा जाता कि ये कौन पैगंबर के किथन किन हैं, कौन उनके महबूब हैं, सब लपेट में आ जाते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई नबूवत में अपने घर वालों को जमा किया और नाम ले लेकर कहा, या फ़ातिमा तु बिनती रसूलिल्लाह अनकिज़ी नफ्सकी मिनन्नार, या सफ़ीयतु अम्मति रसूलिल्लाह अनकिज़ी नफ्सकी मिनन्नार, फ़इन्नी ला अम्लिकु लकी मिनल्लाहि शैया। ए फातिमा अल्लाह के रसूल की बेटी, ए सफ़िया अल्लाह के रसूल की फूफी, अपने आप को जहन्नुम से बचा लो, मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे बारे में किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता। तो यहाँ बता दिया कि अल्लाह पैगंबरों के औलाद भी हो, बीवी भी हो, अगर वो शिर्क इख्तियार करेगी तो वो भी अजाब की लपेट में आ जाएगी। वकील या अदब लई मा की व या समा उकली वगीद अलमा वक़ुज़ी अलअम्र वस्तवत अलल जूदी, और हुक्म दिया गया कि ए ज़मीन निगल जा अपना पानी, और आसमान से कहा कि थम जा, और पानी को रोक दिया गया और मामला चुका दिया गया और कश्ती ठहर गई जूदी पहाड़ पर। यानी जब वो सारा मामला हो गया, वो कौम गर्क हो गई, तो एक जूदी पहाड़ पर आर्मीनिया के करीब शायद ये मकाम है जहाँ पर यह कश्ती ठहरी थी। वकील अबोदल लिल कौम ज़ालिमीन, और हुक्म दिया गया कि दूर हो जाए, फिटकार है उन लोगों के लिए जो ज़ालिम है। वनादा नूह रब्बहू, और सैयदना नूह ने अपने रब को पुकारा। फ़काल, और कहा, रब्बी इन्नबनी मिन अहली, कि मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था। वह इन्नवादकल हक, और तेरा वादा भी सच्चा है, तूने कहा था कि मैं अपने रसूलों को उनके अहल को रुसवा नहीं करूँगा। वह अंत अहकमुल हाकिमीन, और तू सबसे ज़्यादा हुक्म देने वाला है। क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए नूह वो तुम्हारे अहल में से नहीं था, तुम्हारे घर वालों में से नहीं था, वो मुशरिक था, वो तुम्हारा अहल नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, उसका काम बहुत बुरा था, वो नेक अमल नहीं करता था। फ़ला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, तो मुझसे ऐसी बात का मुतालबा मत करो जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है। इन्नी आयुज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम जो है वो जाहिलों में से हो जाओ, कहीं जाहिलों में से मत हो, ये सवाल करके तुम अच्छी बात नहीं कर रहे। अब आप देखिए कि अल्लाह के रसूल हैं और 950 बरस अल्लाह की खिदमत की है, चाकरी की है, दावत दी है, लेकिन एक मुतालबा किया है अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे एक तंबी आई है। तो अब आप ज़रा लबो लहजा देखें अल्लाह के रसूल का, यानी ऐसे जलील कदर रसूल है, लेकिन वही बात है कि अल्लाह अल्लाह है और बंदा बंदा ही है, चाहे कितना ही मुकर्रब क्यों ना हो। क़ाल रब्बी इन्नी आऊज़ु बिका अन अस अलक माली सलीब हेल, ए रब سیدنا نوح نے کہا کہ اے میرے رب بے شک میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی بات کا مطالبہ کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. اب آگے سنیے, وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, اور اے رب تو نے اگر مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کی تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی پیغمبر سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا, کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی, بس ایک مطالبہ انہوں نے کیا اپنے بیٹے کے بارے میں. لیکن جب اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی تو اب یہ لب و لہجہ دیکھیں کہ اللہ میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا. قیل یا نوح بت بسلام منا و برکات علیک وعلا امم ممن معک, حکم ہوا کہ اے نوح اترو سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے, اور ہماری طرف سے برکتیں ہوں تم پر اور ان لوگوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں. وہ امم سنمتعہم, اور دوسرے اور جو دوسری امتیں ہیں جن کو ہم ان قریب فائدہ پہنچائیں گے. ثم یمسہم منا عذاب علیم, اور پھر ان قریب ان کو پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب. یہ بات کہی جاتی ہے عام طور پہ کہ سیدنا نوح علیہ السلام پر جو طوفان آیا اس کے بعد جو انسانیت چلی ہے وہ ان کے تین بیٹوں کی نسلوں سے چلی ہے, اسی لیے عام طور پہ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دوبارہ سے جیسے ایک آغاز ہوا انسانیت کا. تو کہا کہ پھر ان کی اولادیں پیدا ہوں گی, ان میں سے بہت سو کو ہم نوازیں گے پیغمبروں پر ایمان لانے کی وجہ سے, اور بہت سو کو ہم عذاب دیں گے پیغمبروں کے انکار پر. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک, یہ باتیں جو ہے وہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر, اور اے نبی نہ آپ ان سے واقف تھے اور نہ آپ کی قوم اس سے واقف تھی. بنی اسرائیل وغیرہ تو ان تمام روایتوں سے واقف تھے نا, ان کی تو بک آف جینیسس جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی وہ تو ابتدائے آفرینش سے شروع ہوتی ہے اور پوری تفصیل ہے سیدنا عیسیٰ تک کی پوری تفصیل ہے اس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ. لیکن یہ جو آپ کی قوم ہے بنی اسماعیل یہ تو بالکل واقف نہیں تھی ان میں سے کسی بات سے. تو آپ ثابت قدم رہیے, ان العاقبت للمتقین, بے شک جو اچھا انجام ہے وہ متقین ہی کا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو, تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ان انتم الا مفترون, بے شک تم جھوٹ بولتے ہو, جو شرک کر رہے ہو یہ جھوٹ ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, اے میری قوم میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں. ان اجری الا علی الذی فطرنی, میرا اجر یا میری مزدوری تو اس ہستی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا, یعنی اللہ پر ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اور اے میری قوم اپنے رب کی جناب میں استغفار کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو. کیا ہوگا, یوسل السماء علیکم مدرارا, تو وہ تم پر چھوڑ دے گا آسمان کو اور جو ہے چھاجوں می تم پہ برسے گا. و یزیدکم قوتاً الی قوتکم, اور تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کرے گا. ولا تتولوا مجرمین, اور دیکھو رو گردانی نہ کرو اور گناہگار مت بنو. یعنی وہی اندیشہ ہوتا ہے مشرک قوم کو کہ اگر ہم اپنی بتوں کو چھوڑ دیں گے تو ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے, کوئی آسیب نہ آ جائے, کوئی چیز ہم پر نہ آ جائے. کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں نوازیں گے. قالو یا ہود ما جئتنا ببینہ, انہوں نے کہا کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح سند تو لے کر نہیں آئے. وما نحن بتاریکی آلہتنا عن قولک, اور ہم محض تمہارے کہنے پر اپنے پرانے آلیہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحن لک بمؤمنین, اور ہم تم پر یقین کرنے والے بھی نہیں ہیں. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسو, اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر جو ہے تم ہمارے جو ہے بعض آلیہ جو ہیں بعض معبودوں کو جو بری باتیں کر رہے ہو ان کی مار تم پر پڑی ہے, ان کی طرف سے کوئی آسیب تم پر آیا. یہ ہوتا ہے ایسا کہ تم نے ہمارے بزرگوں کو اولیاء اللہ کو اور صالحین کو اور ہماری دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے, اس کی وجہ سے ان کی مار تم پر پڑی ہے, تمہارا دماغ الٹ گیا ہے, تم الٹی پلٹی باتیں تم نے کرنی شروع کر دی ہیں. قال انی اشہد اللہ مشہد انی بری مما تشرکون, تو سیدنا ہود نے کہا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. من دون ہی, اللہ کے سوا جو تم جو ہے وہ لوگوں کو شریک کر رہے ہو. فقی دونی جمیان, تم ایسا کرو کہ میرے بارے میں تم سارے کے سارے تدبیر کر لو, سارے کے سارے میرے خلاف کوئی اقدام کر لو. ثم لا تنظرون, اور دیکھو پھر مجھے کوئی مہلت نہ دینا. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہ سٹیٹمنٹ بھی ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں, یہ ہر نبی نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی تم سارے اپنے جو ہے معبودوں کو جمع کر لو, اکٹھا کر لو, ساری طاقت جمع کر لو, میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو, مجھے اللہ پر اعتماد. ما من دابۃ الا ہو آخر بناسیتہا, زمین پر کوئی چوپایا نہیں ہے مگر اللہ نے اس کو اس کی ماتھے کی یا پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی آتا ہے نا, ناسیتی بیدک, اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے. اب اصل میں ہوتا یہی ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھیں اگر تو اللہ تعالیٰ کو ہم پر پورا اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے کیوں دیتے ہیں, ہمیں یہ بت بنانے کیوں دیتے ہیں. کہا کہ نہیں, تکوینی طور پہ ہر چیز اللہ کی گرفت میں ہے, لیکن چونکہ اللہ نے دنیا آزمائش کے اصول پہ بنائی ہے تو تمہیں اختیار دیا ہے, چاہو تو شرک کرو چاہے تو ایمان لاؤ. ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب ہی سیدھی راہ پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ, اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جو میری طرف بھیجا گیا ہے میں تو اس کو تم تک پہنچا کے رہوں گا یا پہنچا چکا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور کہا کہ میرا رب جو ہے تمہارے بعد کسی اور کو زمین میں خلافت دے دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا, اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے, اتراؤ نہیں, اللہ تعالیٰ تم سب کو فنا کر دے گا, تمہارے بعد اور لوگوں کو زمین کی خلافت دے گا. ان ربی علی کل شیء حفیظ, بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معہ برحمت منا, اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا, عذاب کا فیصلہ آ گیا, ہم نے ہود کو اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا. ونجیناہم من عذاب غلیظ, اور ہم نے ان کو ایک بہت سخت اور بھاری عذاب سے بچا لیا. وتلک عاد جحدوا بآیات ربہم, اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وعصوا رسلہ, اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. واتبعوا امر کل جبار عنید, اور پیروی کی کس کی, ہر اس لیڈر کی جو سرکش تھا اور مخالف تھا. واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنۃ, اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت. ویوم القیامہ, اور یہ لعنت قیامت تک ان کا پیچھا کرے گی. الا ان عادا کفروا ربہم, آگاہ ہو جاؤ بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود, سن لو کہ پھٹکار ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی. اب یہ پورا قصہ سنا دیا. اب ظاہر بات اہل کتاب بھی واقف تھے, مشرکین کو بھی ان کی خبریں تھیں کہ بھائی ایک عاد قوم تھی اس کو ہلاک کر دیا گیا. اب وہ اس کی یہی توجیہ کرتے تھے کہ بھائی کوئی نہیں, لائف سائیکل ہوتا ہے قوموں کا, قومیں پیدا ہوتی ہیں, جوان ہوتی ہیں, بوڑھی ہوتی ہیں, مر جاتی ہیں, ایسے ہی ہوا ہوگا. اب قرآن مجید بتا رہا ہے کہ نہیں, دیکھو ان کی ہلاکت کا سبب کیا تھا, اللہ کے ساتھ کا شرک کیا, رسولوں کی نافرمانی کی, اور اپنے جو ہے گمراہ لیڈروں کی پیروی کی. اب یہ ساری باتیں جو ہے مشرکین مکہ کو بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو پھر تم وہی غلطی کر رہے ہو جو پہلے قوموں نے کی ہے, تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور اسی طریقے سے ہم نے ثمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو. قال یا قومی عبد اللہ مالکم من الہ غیر, انہوں نے بھی یہ کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو, تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ہوا انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا, اسی نے تمہیں زمین میں بنایا اور زمین میں تمہیں اس نے تمکن دیا, تمہیں بسایا زمین میں. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے, اسی اللہ کی جناب میں استغفار کرو, اسی کی طرف رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب, بے شک میرا رب بہت نزدیک ہے اور وہ سننے والا ہے, قبول کرنے والا ہے. قالو یا صالح قد کن تفینا مرجوا قبل ہذا, تو ان کی قوم کے سرداروں نے یا چودھریوں نے کہا کہ اے صالح, اس سے پہلے ہمیں تم سے بہت زیادہ امیدیں تھیں, تم تو ہماری آنکھوں کا تارا تھے, ہم تو سمجھتے تھے کہ تم ہمارے پیشوا بنو گے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ تو صادق اور امین ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں تم سے بڑی توقعات تھیں کہ تم بہت آگے جاؤ گے اور لیڈر بنو گے, لیکن تم نے تو لٹیا ہی ڈبو دی. اتنہانا نابود ما کان یعبد آباؤنا, تم نے عجیب باتیں کرنی شروع کر دیں, کیا تم ہمیں منع کرتے ہو ان ہستیوں کو پوجنے سے جس کو ہماری آبا و اجداد پوچھتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور بے شک ہم تو جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو بہت کھلے شک میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارا دل نہیں مانتا. قال یا قومی ارائی تم ان کن تو اعلیٰ بہینۃ من ربی و آتانی منہ رحمتن, وہی بات کہ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم بھلا غور کرو, اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے بھی نوازا ہے. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ, تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے, تمہاری تو مت ماری گئی ہے, تمہیں تو اللہ نے وحی بھی نہیں دی, مجھے تو دے چکا ہے نا, تو میں تو افورڈ نہیں کر سکتا, مجھے کون بچائے گا اللہ سے. فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ, تو تم نہیں بڑھاتے مجھے مگر نقصان میں. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً, اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک واضح نشانی. فَذَرُوهَا, تو اس کو چھوڑے رکھو. تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ, कि एक चलती चुकती रहे, खाती रहे अल्लाह की ज़मीन में, वला तमस्सूहा बिसूइन, और इसको जो है बुरी नीयत से हाथ ना लगाना, फयाखुज़कुम अज़ाबुन करीब, कि तुम्हें आ पकड़े एक करीब का अज़ाब, जल्दी का अज़ाब। फ़ाकरूहा, तो उन्होंने सरकशी की, उसकी कूँचें काट डाली। फ़काल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम, तो सैयदना सालेह ने कहा कि अब तुम अपने घरों में 3 दिन तक जो है रह लो और मज़े कर लो। ज़ालिका वादुन गैरु मकज़ूब, ये एक ऐसा वादा है जो झूठा नहीं है, उसके बाद तुम पर अज़ाब आएगा। फ़लम्मा जा अमरुना नजैना सालिहुम वल्लज़ीन आमनु माहु बिरहमतिन मिन्ना व मिन खिज़्य यौमिज़, और कहा कि जब हमारा फ़ैसला आ गया यानी अज़ाब आ गया, हमने बचा लिया सालेह को भी और उन लोगों को भी जो उनके साथ ईमान लाए, ख़ास अपनी रहमत से, और उस दिन की रसवाई से हमने उनको बचा लिया। इन रब्बका हुवल कवीयुल अज़ीज़, बेशक आपका रब ही क़ुव्वत वाला है और ज़बरदस्त है। व अख़ज़ल्लज़ीना ज़लमु सैहतु, और वो लोग जिन्होंने ज़ुल्म किया था, शिर्क किया था, उनको पकड़ लिया एक हौलनाक चीख ने। फ़असबहु फ़ी दियारिहिम जासिमीन, तो वो रह गए सुबह अपने घरों में औंधे पड़े हुए। कअल्लम यग़नौ फ़ीहा, ऐसे हो गए जैसे कभी वहाँ बसे ही नहीं थे। अला इन्ना समूदा कफ़रु रब्बहुम, सुन लो कि समूद ने इनकार किया अपने रब का। अला बौदल्ली समूद, आगाह हो जाओ कि फिटकार है समूद पर। वलकद जात रुसुलना इब्राहिम बिल बुशरा, और बेशक आए हमारे पैगंबर इब्राहिम के पास बशारत लेकर। कालू सलामा, और उन्होंने कहा कि सलामती हो। क़ाल सलामुन, तो सैयदना इब्राहिम ने भी उनके सलाम का जवाब दिया कि आप पर भी सलामती हो। फ़मा लबीसा अन जा बिइजलिन हनीस, तो उन्होंने ज़्यादा देर नहीं लगाई, मगर जल्दी से जाकर एक भुना हुआ बछड़ा उनके लिए ले आए, तला हुआ बछड़ा। फ़लम्मा रा आईदीहुम ला तसिलु इलैहिम नकिरहुम, तो जब उन्होंने देखा कि जो मेहमान आए हैं ये हाथ नहीं बढ़ा रहे उस खाने की तरफ, नकिरहुम, तो उनके अंदर खटक पैदा हुई, ये कौन लोग हैं, कोई दुश्मन है या क्या मामला है कि भाई ये, अगर तो ज़ाहिर बात है कि अगर हमारे जानने वाले हैं और अच्छे मेहमान हैं तो खाना खाएँगे, लेकिन खा नहीं रहे। वाऊ जैसा मिनहुम खीफा, और उन्होंने दिल में खौफ महसूस किया। कालू ला तखफ़, उन्होंने कहा कि डरो मत। इन्ना उर्सिलना इला कौमी लूत, हमें भेजा गया है कौम लूत की तरफ। तो ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, कुछ लोग ये कहते हैं कि भतीजे थे, कुछ लोग कहते हैं कि चचाजाद भाई थे, कज़न थे सैयदना लूत, और इनको मबूस किया गया था जो है वो सदूम और अमूरा की बस्तियों की तरफ। तो असल में उनकी तरफ अजाब का फ़ैसला लेकर जा रहे थे फरिश्ते, और रस्ते में इनको भी एक बशारत देनी थी, तो कहा कि हम तो उस उधर जा रहे हैं। वमरातुहु क़ाइमतुन फ़दहिकत फ़बशरनाहा बिइसहाक वमिन वराइ इसहाक याकूब, और कहा कि उनकी बीवी वहीं पर खड़ी थी सैयदा सारा, तो वो एकदम हंस पड़ी, तो हमने उनको बशारत दी इसहाक की, वमिन वराइ इसहाक याकूब, और इसहाक के पीछे याकूब की, यानी इससे पहले सैयदा हाजरा से सैयदना इस्माइल पैदा हो चुके थे, अब ये जो सैयदा सारा थी ये भी बांझ रही हमेशा, उनको बशारत दी कि उनके यहाँ एक लड़का पैदा होगा यानी सैयदना इसहाक, और सैयदना इसहाक के लड़का पैदा होगा यानी सैयदना याकूब, यानी बेटे और पोते की बशारत दी। क़ालत या वही लता अलीदुआना अजूज वहाज़ा बाली शेखा, तो उनकी बेगम ने कहा कि है मेरी ख़राबी कि क्या मैं अब जनूँगी जबकि मैं बुढ़िया हो चुकी हूँ, और ये मेरा जो खावंद है ये भी बूढ़ा हो चुका है, यानी खावंद भी बूढ़ा हो चुका, मैं भी बूढ़ी हो चुकी, हमेशा से बांझ रही, अब मैं जनूँगी। इन नहाजा लशई उन अजीब, ये तो बहुत ही अजीब बात है। कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, तो फरिश्तों ने कहा कि क्या तुम अल्लाह के फ़ैसले पर ताज्जुब कर रही हो, अल्लाह की रहमत हो, उसकी बरकत हो तुम पर ए घर वालो, यानी नबी के घर वालो तुम पर रहमत हो। इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक वो अल्लाह ही है जो जिसकी हमद की गई है और जो बहुत ही बुजुर्गी वाला है। अब यहाँ आप देखिए, यानी अहले बैत किसको कहा गया है, अहले बैत कहा गया है सैयदा सारा को जो उनकी ज़ौजा हैं। तो सबसे बढ़ के असल में अहले बैत कौन होते हैं, बीवियाँ होती हैं और बेटे होते हैं, और बेटियाँ होती हैं जब तक कि वो ब्याही ना जाएँ, जब वो बेटियाँ ब्याह जाती हैं फिर वो आपके अहले बैत से निकल के उस उधर चली जाती हैं जहाँ उनका निकाह होता है। इसीलिए ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा को और हसनैन करीमैन को और सैयदना अली को चादर में लिया और कहा कि हा उलाई अहलु बैती, कि ये भी मेरे अहले बैत हैं, वरना उर्फ में नहीं आते, उर्फ में अहले बैत में शामिल नहीं होते, लेकिन कहा कि ये भी मेरे अहले बैत हैं। लेकिन असलन अहले बैत कौन है, आपकी अजवाज हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं। और कैसे बदबख्त लोग हैं कि जो असल में अहले बैत थे यानी अजवाज मुतहरात थे, उनको अहले बैत से खारिज कर दिया है और बहुत से लोगों को शामिल कर दिया। फ़लम्मा ज़हबान इब्राहिम अर्रौ वजातुल बुशरा युजादिलुना फ़ी कौम लूत, तो जब सैयदना इब्राहिम से वो घबराहट जाती रही और उनका उनके पास बिशारत भी आ गई, तो फिर वो झगड़ने लगे कौम लूत की बाबत। इन्ना इब्राहीम लहलीम अव्वाहुम मुनीब, बेशक इब्राहीम बहुत तहम्मुल वाले, नरम दिल और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे, उनमें रहमत बहुत थी। यहाँ इजमाल है, बाइबल में तफसील है कि वो आर्गू करने लगे, भाई क्यों अज़ाब दिया जा रहा है, क्या वहाँ 30 लोग भी नहीं है साहिब, यानी 50 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, यानी वो चाह रहे थे कि अज़ाब टल जाए। तो कहा कि नहीं, या इब्राहीम आरिज़ अन हाज़ा, ए इब्राहीम इस ख्याल को छोड़ दें, ये तय हो चुकी बात। इन्नहु कद जा अम्रु रब्बिक, बेशक आपके रब का फ़ैसला आ चुका। व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मर्दूद, अब उन पर एक ऐसा अज़ाब आकर रहेगा जिसको लौटाया नहीं जा सकता। वलम्मा जात उसूना लूतन सी अबीम वज़ाक अबीम ज़रा, और जब वो पहुँचे हमारे पैगंबर हमारे फरिश्ते लूत के पास, तो वो गमगीन हुआ और उनका दिल तंग हुआ। वक़ाल हाज़ा यौमुन आसीब, और उन्होंने कहा कि ये बहुत सख्त दिन है, क्योंकि वो फरिश्ते आए थे बिल्कुल नौजवान खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में, और उनकी कौम की जो ख़राबी थी वो मालूम है सबको। वजाहु कौमु युहरऊना इलैह, जब उनको मालूम हुआ कि जहाँ पर जो है वो नौजवान लड़के आए हुए हैं, तो वो दौड़ते हुए बेइख्तियार उनके घर की तरफ लपके। व मिन क़ब्लु कानू यामलून सैयात, और इससे पहले वो बुरे आमाल कर रहे थे। क़ाल या कौमि हाउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, तो सैयदना लूत ने बहुत लजाजत से उनसे कहा कि ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं। फ़त्तकुल्लाह वला तुख़ज़ूनी फ़ी ज़ईफ़ी, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मेरे इन मेहमानों की बाबत मुझे रुसवा न करो। अभी उनको मालूम नहीं था ये मेहमान कौन है, लेकिन कहा कि ये मामला न करो। और हाउलाई बनाती से मुराद जाहिर बात है उनकी, जो नबी जो होता है वो बमंज़िला बाप होता है अपनी कौम के लिए। तो कहा कि भाई तुम्हारे घरों में मेरी बेटियां मौजूद हैं, उनसे तुम तमत्तो करो, और फिर मेरी बेटियां हैं इनसे निकाह करके और जायज़ तरीके से तमत्तो करो, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। मेरे जो है ख़ासतौर पे मेहमानों की बाबत मुझे रुसवा ना करो। अलैस मिनकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम में एक भी नेक चलन आदमी नहीं है, क्या एक भी जो है हिदायत याफ्ता आदमी नहीं है। क़ालू लक़द अलिमता मा लना फ़ी बनातिका मिन हक़, तो उनकी कौम ने कहा कि तुम जानते हो कि हमको तुम्हारी बेटियों से कुछ गरज नहीं है। وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، انہوں نے کہا کہ اے کاش میرے پاس خود کوئی طاقت ہوتی، یا میں کوئی پناہ لیتا کوئی مستحکم پناہ، یعنی میرا کنبہ قبیلہ کوئی بڑا ہوتا مضبوط ہوتا جو تمہاری اس چیز کو روک سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رحم اللہ لوطاً لقد کان یأوی الی رکن شدید، کہ اللہ رحم کرے لوط پر، وہ تو ایک بہت مضبوط سہارے میں تھے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سہارے میں تھے، ظاہر اللہ کا سہارا تو بہت مضبوط ہے۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، اب فرشتوں نے اپنا آپ ڈسکلوز کر دیا، کہا کہ اے لوط ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم پر کوئی دست درازی نہیں کر سکتے۔ فاسری باہلک بقطع من اللیل، تو آپ لے کے نکل جائیں اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو رات کے کچھ حصے میں۔ ولا یلتفت منکم احد الا امراتک، اور اب کوئی بھی جو ہے تم میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے سوائے تیری عورت کے، یعنی وہ تو مڑ کے دیکھے گی کیا، دیکھیے کیا، بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، اور اس عورت کو، چونکہ وہ ظاہری بات مشرکین میں سے تھی اپنی قوم کے ساتھ تھی، کہا کہ اس کو پہنچ کے رہے گا جو ان سب کو پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے۔ الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح قریب نہیں ہے، بہت قریب ہے ان کا جو عذاب کا وقت۔ فلما جاء امرنا، پھر جب پہنچا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کو الٹا دیا، اس کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور ہم نے ان پر بارش کی کنکروں کے پتھر کی، اور جو تہ بتہ تھے، لگاتار تھے، اور نشان زد کیے ہوئے تھے تیرے رب کی طرف سے، جیسے گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے نا، جیسے ایک مجرم کے لیے متعین تھا کہ یہ پتھر اس کو لگے گا اور یہ اس کو سنگسار کرے گا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ جو بستی ہے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ یہاں ظالموں سے مراد قریش ہیں، یعنی قریش سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری تجارتی سفر کے دوران یہ بستیاں آتی ہیں سمود اور امورا کی، الٹی ہوئی بستیاں تم دیکھتے ہو کھنڈرات، لیکن تمہیں کوئی چیتا نہیں ہوتا، تمہیں کوئی عبرت نہیں ہوتی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تھا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو سیدنا شعیب نے کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ہاں جو خرابی تھی فائنینشیل افیئرز میں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، मैं तुमको देखता हूँ कि तुम आसूदा हाल हो, तुम मालदार लोग हो, तुम्हें कोई जान के लाले थोड़ी पड़े हुए हैं कि तुम इस्तेदार में कोई इस तरह की डंडियाँ मारो, अच्छे अच्छे भले खाते पीते लोग हो। वइन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमी मुहीत, और मुझे अंदेशा है तुम्हारे मामले में एक ऐसे अजाब का, एक ऐसे दिन के अजाब का जो घेर लेगा। वया कौमी औफुल मिकयाल वल मीज़ान बिल किस्त, और ए मेरी कौम माप तोल को पूरा करो इंसाफ के साथ। वला तबखसु नास अशियाअहुम, और देखो लोगों को उनकी चीज़ें घटा के मत दो। यानी ये जो तत्फीफ़ होती है जो सूरह मुतफ़िफ़ीन में आएगी ना, वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन अल्लज़ीन इज़ा क़तादू अलन नास यस्तौफ़ून व इज़ा क़ालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून, के लोगों से जब लेते हैं तो पूरा लेते हैं, यानी मुआवजा या कीमत पूरी ले लेते हैं, और जब लोगों को माप या तोल के देते हैं तो कम तोल के देते हैं। तो ज़ाहिर बात ये तत्फीफ है, तो ये ना करो। वला तासव फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, और देखो ज़मीन में फसाद मचाते मत फिरो। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम, अल्लाह ताला की तरफ से जो जायज़ तुम्हें माल बच रहेगा, जो तुम्हारी बचत होगी, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी आम तिजारत में अच्छा वाला मुनाफा मिल जाता है, वो अल्लाह की तरफ से तुम्हें दिया जा रहा है, उसको कबूल करो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। वमा अना अलैकुम बिहफीज़, और मैं तुम पर कोई निगहबान नहीं हूँ। कालू या शुआइबु असलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा काना याबुदु आबाउना व अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा, उन्होंने कहा कि ऐ शुएब, ये तुम अजीब नमाज पढ़ते हो, हम भी अपने देवताओं के आगे पूजा पाठ करते हैं, हम भी उनके लिए मेले ठेले मुनक़द करते हैं, लेकिन तुमने कोई अजबी नमाज पढ़नी शुरू की है, कोई नई इबादत तुमने शुरू की है, कि तुम्हारी नमाज जो है तुम्हें इससे जो इसका हुक्म देती है कि अन नतरुका मा याबुदु आबाउना, कि हम छोड़ दें जो हमारे आबा व अजदाद पूछते थे। ये अजीब नमाज तुमने पढ़ी है कि हमसे मुतालबा कर रहे हो कि शिर्क छोड़ दो, और दूसरी बात क्या तुम कहते हो, व अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा, और तुम हमसे ये कहते हो कि हम अपने मालों में जो चाहें करते रहें, ये ना करें। यानी हमारा रवैया तो ये कि हमारा माल है, हमने कमाया है, जो चाहें करें। तुम कहते हो कि नहीं, माल को कमाने की भी लिमिट्स हैं, कैसे कमाना है उसको खर्च करने की भी लिमिट्स हैं। तो ये जुमला बहुत अहम है कि अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा, कि हम अपने मालों के मामले में जो चाहें करें। ये गोया जिसे कहते हैं कैपिटलिस्टिक जो स्पिरिट है, उसको एक फ्रेज़ में बिल्कुल जमा कर दिया कि गैर महदूद मिल्कियत, गैर महदूद इंतफा, कि बस आप जो मर्ज़ी कमा लें, जितना मर्ज़ी कमा लें, चाहे जितना ही गैर इंसानी आप मुनाफा कमा लें, वो सब जायज़ है। तो कहा कि ये अजीब इबादत है जो हमें इससे रोकती है कि अपने माल को कमाने के हवाले से और अपने माल को खर्च करने के हवाले से हम हमारे पास पूरा इख्तियार ना हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो पांच सवाल जिनके जवाब जब तक बनी आदम नहीं देगा कि उसके पांव नहीं टलेंगे, उनमें दो सवाल यही हैं कि उन एक सवाल ये किया जाएगा कि माल कहाँ से कमाया और माल को खर्च कहाँ किया, इन दोनों के बारे में मुहासबा होगा। इन्नकल अंतल हलीम व रशीद, बहुत तंज में उन्होंने कहा, ताने में कहा कि ए शुएब, तुम तो बहुत ही बावकार और बहुत ही नेक चरण लगते हो, बहुत ही को नेक आदमी हो तुम। काले या कौमी अराई तुम इन कुन तो आला बहीनतिम में रब्बी वरज़कनी मिन्हु रिस्कन हसना, वही देखें फ्रेज़ हैं, वही जवाबात हैं। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, तुम गौर नहीं करती, अगर मैं हूँ अपने रब की तरफ से एक वाज़े दलील पर और उसने मुझे एक बहुत पाकीदा रिस्क भी दे दिया है। वमा उरीद अन उखालिफकुम इलामा अनहाकुम अन, और मैं नहीं चाहता कि जिस चीज़ से मैं तुमको मना करता हूँ मैं ख़ुद उसकी मुखालफत करूँ। यानी ये मैं नहीं कर सकता कि तुम्हें तो मना करूँ उससे शिरक से और ख़ुद इसमें मुलव्वस हो जाऊँ। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततात, मैं तो चाहता हूँ बस इस्लाह जो मेरे बस में है। यानी इस्लाह का लफ्ज़ बहुत अहम है, हमारे यहाँ बाज़ औक़ात जो ज़्यादा बड़े बड़े अल्फाज होते हैं लोग वो बहुत बोलते भी हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन उनसे कहें कि भाई इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए तो ये लफ्ज़ उनको बहुत हल्का लगता है, लेकिन ये अल्लाह के एक बदगुज़ीदा रसूल हैं जो ये कह रहे हैं कि इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततात, मैं तो बस इस्लाह चाहता हूँ अपने बस पढ़ते। इसीलिए मौलाना अली मियां अलैह रहमा कहा करते थे कि हमें से हर आदमी को ये सोचना चाहिए, दो चीज़ें वो कहा करते थे, हर आदमी की जिम्मेदारी है, सलाह और इस्लाह, अपने अंदर सालिहियत पैदा करना, अपने अंदर नेकी पैदा करना, और लोगों के अंदर खैर पैदा करना, लोगों की इस्लाह की कोशिश करना। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और मुझसे तो जो बन आता है वो अल्लाह की तरफ से है, वो अल्लाह की तौफीक से है। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, मुझे मैं उसी पे भरोसा करता हूँ, उसी की तरफ मेरा रुजू है। व या कौमि ला यजरिमन्नकुम शिकाकी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाबा कौम नूहिन अव कौम हूदिन अव कौम सालेह, और देखो ऐ मेरी कौम, कहीं मेरी ज़िद तुम्हें उस जगह न ले जाए कि तुम पर आ पड़े वैसा अजाब जैसा अजाब आया था नूह की कौम पर या हूत की कौम पर या सालेह की कौम पर। यानी मेरी जिद में अपनी मंजिल खोटी क्यों कर रहे हो, मेरी जिद में अल्लाह का इनकार कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो। वमा कौम लूत मिनकुम बिबईद, और कौम लूत के जो खंडरात हैं वो तो तुमसे ज़्यादा दूर नहीं हैं। वस्तगफिरु रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह, और देखो इस्तिग़फ़ार करो अपने रब की जनाब में और फिर उसकी तरफ रुजू करो। इन रब्बी रहीमुम वदूद, बेशक मेरा रब बहुत ही रहम करने वाला बहुत ही मोहब्बत करने वाला है। कालू या शुएब मा नफ़कहु कसीरम मिम्मा तकूल, उन्होंने कहा कि ऐ शुएब जो तुम हमसे बहुत सी बातें करते हो वो हमारी समझ में नहीं आती, हमारे पल्ले नहीं पड़ती। वइन्ना लनराक फ़ीना ज़ईफ़ा, और हम तो तुम्हें अपने में बहुत कमज़ोर देखते हैं, तुम कोई बहुत ताकतवर आदमी नहीं हो। वलौला रहतुका लरजमनाक, और अगर तुम्हारा ये कुंबा कबीला ना होता ना तो हम तुम्हें संसार कर देते। वमा अंता अलैना भी अज़ीज़, और तुम हमारे नज़दीक कोई बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं हो। इस तरह आपको मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी जो है जो कुरैश को रुकावट थी वो इसी तरह की थी कि ज़ाहरी बात है अबू तालिब बड़े आदमी थे, सरदार थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अमान में थे, इस वजह से वो अल्लाह के नबी पे कोई हाथ नहीं डाल सके। काल या कौमी अरहती आज़ु अलैकुम मिन अल्लाह, उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम क्या मेरा कुंबा तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा कुव्वत वाला इज़्ज़त वाला है अल्लाह के नस्बत। यानी तुम्हें जो है मेरे कुंबे का तो डर है लेकिन अल्लाह का कोई डर नहीं है। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, और अल्लाह को और उसके हुक्म को तुमने अपनी पीठ के पीछे डाल दिया है, भुला दिया है। इन रब्बी बिमा तामलून मुहीत, बेशक मेरा रब इहाता किए हुए जो कुछ तुम अमल करते हो या अल्लाह के काबू में है। वया कौम अमलू अला मकानतिकुम, और ऐ मेरी कौम तुम अपनी जगह पर अपनी साजिशें करते रहो, अपने काम करते रहो। इन्नी आमिलुन, मैं अपना काम करता हूँ, अल्लाह की बंदगी करता हूँ, उसी की दावत देता हूँ। सौफ़ तालमून मन यातीहि अज़ाबुन युख़्ज़ीहि वमन हुवा काज़िब, अनकरीब तुम जान लोगे कि किस पर आता है वो अज़ाब जो उसको रुसवा कर देगा और कौन है झूठा, यानी रुसवाई किसका मुकद्दर है और झूठ कौन बोल रहा है। वर्तकीबू इन्नी माकुम रकीब, और ताकते रहो मैं भी तुम्हारे साथ ताक रहा हूँ, मैं भी निगरानी कर रहा हूँ। वलम्मा जा अमरुना नजैना शुआइबन, जब हमारा फ़ैसला आ गया तो हमने नजात दी शुएब को। वल्लज़ीन आमनू माहू बिरहमति मिन्ना, और जो उनके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से। वअख़ज़तिल्लज़ीन ज़लमू सैहा, और पकड़ लिया उन लोगों को जिन्होंने ज़ुल्म किया था, शिर्क किया था एक कड़क ने। फ़असबहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, तो वो सुबह के वक्त अपने घरों में ऐसे रह गए जैसे औंधे हुए होते। कल्लम यगनौ फ़ीहा, गोया कि वो वहाँ कभी बसे ही नहीं थे। अला बोदल्ली मदयन कमा बाइदत समूद, सुन लो को फिटकार है मदयन के लिए जैसा कि फिटकार हुई थी समूद पर। बारकल्लाहु लि वलकुम फिल कुरआनिल अज़ीम वनफ़ानी वैयाकुम बिल आयाति वज़िक्रिल हकीम।